بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
زہرا زیدی اور ساتھی ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں سلام پرستت کرتے ہیں۔ شروتاؤں، آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی پوتر آیتوں کی تلاوت اور ان کے انواد سے کر رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت کرمانک 102 سے 104 تک کی تلاوت کر کے آج کے کارکرم کی شوبھا بڑھائی ہے قاری محمد صدیق منشاوی نے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون۔
صدق الله العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ ہے ایمان والو، ایشور سے ویسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنا چاہیے، اور مسلم رہتے ہوئے ہی مرنا، اور تم سب مل کر ایشور کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور بکھرو نہیں، اور اپنے اوپر ایشور کی اس وبھوتی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے شترو تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پریم جگایا، تو تم اس کی وبھوتی کی چھایا میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، جیسا کہ تم نرک کی کگار پر تھے اور ایشور نے تمہیں اس سے مکتی دلائی۔ ایشور اپنی نشانیوں کو اس پرکار تمہارے لیے اسپشٹ روپ سے ورنت کرتا ہے کہ شاید تم لوگ مارگ درشت ہو جاؤ، اور تم مسلمانوں کے بیچ ایک ایسا گٹ ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کا نمنترن دے، اچھے کاریوں کی اور آمنترت کرے اور برائیوں سے روکے، اور ایسے ہی لوگ سفلتا پراپت کرنے والے ہیں۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ شروتاؤ، ہمارا یہ پرسارن آپ شارٹ وے میں 25 میٹر بینڈ برابر 11,860 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ آج بدھوار ہے، اردو بہشت کی 21، شوال کی 9 اور مئی کی 11 تاریخ۔ اس سب ہمیں پرسارت ہونے والے کارکرم اس پرکار ہیں۔ سب سے پہلے آپ سنیں گے وشو سماچار، اس کے بعد راجنیتک چرچا، اس کے بعد ہم آپ کو سنوائیں گے شورے گاتھا، اور انتم کارکرم ہوگا آج کل۔ اب آپ سید میسم اور مریم مہردادی سے وشو سماچار سنیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ اسرائیلی سنائپروں نے الجزیرہ ٹی وی کی سینئر فلسطینی رپورٹر شیرین ابو اقلے کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ اسرائیلی سینا کے ہاتھوں الجزیرہ کے پترکار کی ہتیا کی ایران نے کڑی نندا کی ہے۔ عرب سنگھ نے مسجد الاقصی کو بانٹنے کی اسرائیل کی یوجنا پر کھید جتایا ہے۔ سینت تکنیک کے کھیتر میں ایران کی اچھی پرگتی کی امریکی ویب سائٹ نے پرشنسا کی ہے۔ اور اب آپ وستار سے سماچار سنیے۔
اسرائیلی سینکوں نے اوید ادھکرت ویسٹ بینک میں الجزیرہ ٹی وی کی سینئر پترکار شیریں ابو اخلے کی گولی مار کر ہتیا کر دی ہے۔ 51 ورشیہ پترکار ویسٹ بینک استھت جینن شرناتری کیمپ پر اسرائیلی سینا کے حملے کو کور کرنے کے لیے پہنچی تھی جب ان کے سر میں گولی مار دی گئی۔ الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق الجزیرہ عربی ٹی وی کی جانی مانی فلسطینی رپورٹر کے سر میں گولی ماری گئی ہے، اور اسرائیلی سینا کا یہ بیان جھوٹا ہے کہ ان کی موت فلسطینی لڑاکوں کی گولی لگنے سے ہوئی ہے۔ الجزیرہ نے سیدھا اسرائیلی سینا پر ہتیا کا آروپ لگایا ہے اور اس گھٹنا کی نشپکش جانچ کی مانگ کی ہے۔ الجزیرہ نے انتراشٹریہ سمودائے سے اپیل کی ہے کہ وہ شیرین کی جان بوجھ کر کی گئی ہتیا کی نندا کرے اور اس کے لیے اسرائیلی سینا کی ذمہ داری طے کرے۔ موقع پر موجود چشمدید گواہ اور ساتھی پترکار شتا ہناشا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی سنائپروں نے انہیں نشانہ بنا کر گولی ماری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سنائپروں کو اسپشٹ روپ سے دیکھ سکتے تھے، میں اسے پترکار کی جان بوجھ کر ہتیا کے روپ میں دیکھتی ہوں۔ حماس نے شیرین کی ہتیا کی نندا کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی موت حملہور اسرائیلی سینا کا تازہ اپرادھ ہے۔ اس بیچ اسرائیلی پردھان منتری نفتالی بینیت نے دعویٰ کیا ہے کہ سمبھوتہ الجزیرہ کی رپورٹر کی موت فلسطینیوں کی فائرنگ میں ہوئی ہے۔ حالانکہ موقع پر موجود پترکاروں اور انیہ لوگوں کا کہنا ہے کہ جس سمے پترکار کو گولی ماری گئی ہے اس سمے وہاں کوئی کراس فائرنگ نہیں ہوئی۔ شیرین ابو اقلے کا جنم بیت المقدس میں ہوا تھا، انہوں نے سن 1997 میں الجزیرہ کے لیے کام کرنا شروع کیا تھا۔
ایران کے ودیش منترالے نے الجزیرہ ٹی وی چینل کی رپورٹر شیرین ابو اخلے کو شہید کرنے کے لیے اسرائیل کی کڑی نندا کی ہے۔ ایرانی ودیش منترالے کے پروکتا نے بدھوار کو ایک بیان جاری کر کے کہا کہ زائنی شاسن صحیح خبروں کے سامنے آنے سے ڈرتا ہے۔ گورتلب ہے کہ بدھوار کی صبح اویر ادھیکرت ویسٹ بینک کے جنین شرارتی کیمپ میں اسرائیلی سینکوں کی ایک ریڈ کی رپورٹنگ کرنے پہنچی شیرین کو اسرائیلی سینکوں نے چہرے پر گولی مار دی، جس کے ترنت بعد ان کی موت ہو گئی۔ ایرانی ودیش منترالے کے پروکتا سعید خطیب زادہ نے پترکار کو شہید کیے جانے پر دکھ پرکٹ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کا یہ اپرادھ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ وہ کسی بھی طرح کے نیتک سدھانتوں اور انتراشٹریہ قانونوں کا پابند نہیں ہے۔ خطیب زادہ نے انتراشٹریہ سنستھاؤں اور وشو سمودائے سے مانگ کی ہے کہ شیرین ابو اخلے کی موت کی سوتنتر روپ سے جانچ کی جائے اور زائن شاسن کو اس کے لیے جواب دہ بنایا جائے۔
عرب سنگھ نے مسجد الاقصی کو سمے اور استھان کے لحاظ سے بانٹنے کی اسرائیل کی کوششوں پر کھید ویکت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیت المقدس پر اسرائیل کے حملے کھیتر کی شانتی اور سرکشا کے لیے خطرناک ہیں۔ عرب سنگھ کے مہا سچیو احمد ابو الغیث نے اسرائیل کے ہر اس درشٹیکوڑ یا بیان کا ورودھ کیا جس کا مقصد بیت المقدس کی ایتیحاسک و قانونی حیثیت کو بدلنا ہے۔ انہوں نے بیت المقدس اور مسجد الاقصی پر اسرائیل کے مالکانہ حق کے بارے میں اسرائیلی پردھان منتری نفتالی بینیت کے بیان کی نندہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ بیت المقدس کی رکشا میں فلسطینی راشٹر کے پرتیرودھ کا سمرتھن کرتے ہیں۔ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ پوروی بیت المقدس اور اس کے پوتر اسلامی اور عیسائی استھلوں پر اسرائیل کے کسی بھی پرکار کے حق کا دعویٰ انتراشٹریہ نیموں کا کھلا الگھن ہے، جسے کوئی بھی سویکار نہیں کرتا۔ دوسری اور جارڈن کی سانسد میں فلسطین سے سمبندھت کمیٹی نے اسرائیلی پردھان منتری نفتالی بینیت کے مسجد الاقصی پر اسرائیل کے مالکانہ حق پر آدھارت بیان کو خارج کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ دو عرب مسلمانوں کے دہرے کا استعمال نہ لیں، امتحان نہ لیں۔ اسی مدھے اسرائیلی میڈیا میں ایسی رپورٹیں گھوم رہی ہیں جن میں اسرائیلی پردھان منتری نفتالی بینیت کی سرکار کو ایک سپتاہ کا مہمان بتایا گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے انوسار اس بات کی پربل سمبھاونا ہے کہ نفتالی بینیت ایک سپتاہ کے اندر اپنی سرکار سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔
اسرائیلی میڈیا بھی پرتیرودھ کے نیتاؤں کی ہتیا کے پریناموں سے بھیبت ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے انوسار ہبرو بھاشا کے میڈیا نے سوچنا دی ہے کہ اسرائیل کے سرکشا سنستھاؤں نے صلاح دی ہے کہ غزہ میں حماس آندولن کے پرموکھ ایاس انواری کو سرکشا چنتاؤں کے درشٹیگت قتل نہ کیا جائے۔ خبروں کی مہتوپورن ویب سائٹ العربی الجدید کے انوسار اسرائیلی اخبار یدیوت اہارنوت نے اس پرکار کی کارروائی کو خارج کرتے ہوئے لکھا کہ یہ ہتیا ایک سمپورن یدھ شروع ہونے کا کارن بنے گا اور اسرائیل کو غزہ کے میدان جنگ میں الجھا کر رکھ دے گا۔ سماچار پتر لکھتا ہے کہ اس کے علاوہ لبنان کے ساتھ اتری سیما پر تناؤ کا ایک اور مورچہ کھلنے کی سمبھاونا ہے۔ اسرائیلی کھیتروں کی ورتمان استھتی کا بیورہ دیتے ہوئے سماچار پتر کے سینیہ وشیشجے لکھتے ہیں کہ فلسطین کے بارے میں اسرائیل کی نیتی ہمیشہ سے غزہ اور ویسٹ بینک کے بیچ سمنوے اور سمپرک توڑنے کی رہی ہے، اس لیے ہم اسرائیل میں سینیہ اور جن سرکشا کی سنستھاؤں کو سجھاؤ دیتے ہیں کہ وہ یحییٰ سنوار کی ہتیا کا وکلپ چھوڑ دیں، کیونکہ پردھان منتری نفتالی بینیت اور یدھ منتری بنی گانٹس سہت ورتمان سرکاری ادھیکاری بھی پچھلی نیتیوں ارتھات غزہ اور ویسٹ بینک کے بیچ دوری کی نیتی پر عمل کرنے پر بل دیتے ہیں۔ اسرائیلی پترکار نے بینیت سرکار کی اور سے اس نیتی پر عمل کو اسرائیلی بستیوں میں حالیہ پرتیرودھ کی کارروائیوں کے سامان ہونے کا کارن بتایا اور سویکار کیا کہ سرکار غزہ میں شانتی کا پریاس کر رہی ہے اور وہ کھل کر وواد کے بھے سے تناؤ کم کرنے کا پریاس کر رہی ہے۔ انہوں نے یحییٰ سنوار کی ہتیا کو اسرائیلی منتری منڈل میں متبھید کے پیدا ہونے کا کارن قرار دیا اور بل دیا کہ غزہ میں حماس کے نیتا کی ہتیا کے بعد ایک نیا وواد پیدا کرنے کا مطلب ورتمان تیل آویو سرکار کا خاتمہ ہوگا۔
ایران کی اسلامی کرانتی فورس IRGC نے عراقی کردستان علاقے کی راجدھانی اربل میں ایک بار پھر آتنکوادی گٹوں کے ٹھکانوں پر میزائل حملہ کیا ہے۔ پریس ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق بدھوار کی صبح IRGC نے اربل میں آتنکوادی ٹھکانوں پر میزائل برسائے اور انہیں نشٹ کر دیا۔ इससे पहले IRGC ने कहा था कि उसने देश में आतंकवादी हमलों की योजना बनाने वाली एक आतंकवादी टीम का भंडाफोड़ करते हुए उसके 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार होने वाले आतंकवादियों से प्राप्त होने वाली जानकारी के बाद ही IRGC ने बुधवार को अरबिल में कुछ ठिकानों को निशाना बनाया है। इससे पहले पिछले साल सितंबर में भी IRGC ने इराकी कुर्दिस्तान में कुछ ठिकानों पर मिसाइल फायर किए थे। ईरान का कहना है कि वो अपनी सीमाओं पर आतंकवादियों की उपस्थिति और उनकी गतिविधियों को सहन नहीं करेगा और इन इलाकों को ईरान विरोधी गुटों का गढ़ नहीं बनने दिया जाएगा।
एक अमरीकी वेबसाइट ने ईरान की नौसेना में जागरूस और दमावन 2 नामक 2 स्वदेशी और स्थानीय युद्धपोतों और डिस्ट्रॉयर के निकट भविष्य में सामने आने का उल्लेख करते हुए कहा कि हालिया वर्षों में ईरान ने सैन्य टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत अधिक प्रगति की है। फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार अमरीकी मैगजीन डिफेंस पोस्ट ने अपनी समीक्षा में लिखा कि 2 स्थानीय और स्वदेशी डिस्ट्रॉयर जागरूस और दमावन 2 के ईरान के नौसेना में निकट शामिल होने के बारे में ईरान की नौसेना के कमांडर के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। ईरान की नौसेना के कमांडर एडमिरल शाहराम ईरानी ने हाल ही में एक टेलीविजन कार्यक्रम में कहा था कि जाकरूस और दमावन 2 डिस्ट्रॉयर्स का निर्माण कार्य निर्धारित योजना के अनुसार आगे बढ़ा है और इंशाल्लाह उन्हें जल्द ही लॉन्च कर दिया जाएगा।
गुजरात के पंचमहल जिले के कालोल कस्बे में 2 अलग अलग समुदायों के कुछ सदस्यों के बीच एक छोटी सी बात को लेकर सांप्रदायिक झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में ले लिया। एक पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि घटना सोमवार 9 मई देर रात हुई और इसकी सूचना मिलते ही जिला पुलिस अधीक्षक व अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए तथा स्थिति को नियंत्रित किया। सोलंकी ने बताया कि झड़प की शुरुआत तब हुई जब बारात में नाच रहे 2 लोगों में एक छोटी सी बात को लेकर कहासुनी हो गई। उन्होंने कहा कि इलाके में हिंदू और मुसलमान दोनों रहते हैं, दोनों ही समुदायों के कुछ सदस्य बारात का हिस्सा थे। 2 लोगों के बीच एक छोटी सी बात को लेकर हुई कहासुनी के बाद दोनों समुदायों के सदस्यों के बीच झड़प हो गई। कालोल पुलिस थाने के उप निरीक्षक MK मालविया ने बताया कि झड़प के सिलसिले में 8 लोगों को मौके से हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस अधिकारी के अनुसार दोनों समुदायों के सदस्य एक दूसरे पर पथराव करने लगे। हम घटनास्थल पर पहुंचे और भीड़ को तितर बितर किया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।
भारत नियंत्रित जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा अनंतनाग के मठ में 8वीं शताब्दी के संरक्षित मार्तंड सूर्य मंदिर के खंडहरों में हुई पूजा अर्चना में भाग लेने के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने इस पर चिंता जताई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अधिकारियों ने कहा कि अनंतनाग में उसके द्वारा संरक्षित मार्तंड सूर्य मंदिर परिसर में आयोजित पूजा नियमों का उल्लंघन है, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल हुए थे। अधिकारियों ने कहा कि मुद्दा केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के समक्ष उठाया गया है। ASI द्वारा चिंता जताने के बाद प्रशासन की ओर से कहा गया है कि उसके द्वारा संरक्षित मंदिर पूजा में पूजा के लिए उपराज्यपाल को किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ रेडियो तेरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम लेकर उपस्थित हैं कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। विश्व के हर स्वतंत्र देश को अपने रक्षा आधार को मजबूत करने का अधिकार हासिल है। इसराइली सैनिकों ने अल जजीरा TV की सीनियर पत्रकार की हत्या कर दी। भारत की राजधानी में सरकार की बुलडोजर नीति के विरोध में प्रदर्शन किए गए। दोस्तों, इन विषयों पर हम कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे। ज़ायोनी सैनिकों ने अल जज़ीरा की जानी मानी फिलिस्तीनी पत्रकार शीरीन अबू अकलेह के सिर में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इस बारे में पेश है एक रिपोर्ट जिसे लेकर उपस्थित हैं मोहम्मद मेहदी।
73 वर्षों से अधिक समय से फिलिस्तीनियों के खिलाफ ज़ायोनी शासन के अपराध यथावत जारी हैं। ऐसा नहीं है कि ज़ायोनी शासन के अपराध केवल फिलिस्तीनियों तक सीमित हैं, बल्कि हर उस इंसान, समाज और देश को भी अवैध ज़ायोनी शासन के अपराधों का सामना करना पड़ता है जो फिलिस्तीन की मजलूम जनता का समर्थन करता है। यही नहीं, उन लोगों को भी ज़ायोनी शासन के हमलों का निशाना बनना पड़ता है जो इस अवैध शासन के अपराधों को विश्ववासियों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। आज बुधवार की सुबह को इसराइली सैनिकों के अपराध को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। शीरीन अबू आकला नाम की अल जज़ीरा की 51 वर्षीय फिलिस्तीनी मूल की महिला रिपोर्टर को ज़ायोनी सैनिकों ने आज सुबह उस वक्त गोली मारकर शहीद कर दिया जब वो जेनिन शरणार्थी शिविर में होने वाली घटनाओं को कवरेज दे रही थी, और अली समूदी नाम के फिलिस्तीनी पत्रकार को गोली मारकर घायल भी कर दिया। हालिया महीनों में फिलिस्तीनियों के खिलाफ ज़ायोनी सैनिकों के अपराधों में ध्यान योग्य वृद्धि हो गई है। हालिया महीनों के दौरान ज़ायोनी सैनिकों ने दसियों फिलिस्तीनियों को शहीद और सैकड़ों को घायल कर दिया। अतिक्रमणकारी ज़ायोनी शासन ने अपनी विस्तारवादी और वर्चस्ववादी नीतियों को जारी रखते हुए फिलिस्तीनियों को उनके धार्मिक अधिकारों से भी वंचित कर रखा है। यद्यपि ज़ायोनी शासन के अपराधों के मुकाबले में अरब और पश्चिमी देशों के अधिकांश संचार माध्यमों ने मौन धारण कर रखा है, परंतु ज़ायोनी शासन को अपने खिलाफ कम से कम रिपोर्ट भी बर्दाश्त नहीं है। शीरीन अबू आकला अल जज़ीरा की एक जानी मानी फिलिस्तीनी महिला पत्रकार थी, और ज़ायोनी सैनिकों ने उसे उस वक्त गोली मारकर शहीद कर दिया जब वो रिपोर्टर का वस्त्र धारण किए हुए रिपोर्टिंग कर रही थी। ये पहली बार नहीं है जब ज़ायोनी सैनिक इस प्रकार का अपराध अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले भी वे इस प्रकार का अपराध अंजाम दे चुके हैं। ज़ायोनी सैनिकों के इस प्रकार के अपराधों का लक्ष्य इसराइल द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को विश्ववासियों के कानों तक पहुंचाने से रोकना है, और अतिक्रमणकारी ज़ायोनी सैनिकों का ये कार्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी उल्लंघन है। ज़ायोनी सैनिकों ने कतर के अल जज़ीरा टीवी चैनल की महिला पत्रकार शीरून अबू आकला को शहीद करके ये संदेश दे दिया है कि जो भी इसराइल के अपराधों को विश्ववासियों तक पहुंचाने की कोशिश करेगा उसका भी अंजाम यही होगा। इसी मध्य फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा समिति के एक सक्रिय सदस्य ओसामा अल कवासमी ने बल देकर कहा है कि ज़ायोनी दुश्मन ने अपने इस अपराध से विश्व के रिपोर्टरों को यह संदेश दे दिया है कि जो भी वास्तविकता को विश्ववासियों तक पहुंचाने का प्रयास करेगा उसका भी अंजाम मौत है। इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जो चीज इस प्रकार के अपराधों के जारी रहने का कारण बन रही है वो विश्व समुदाय की चुप्पी है, और जिन कारणों से 73 वर्षों से अधिक समय से ज़ायोनी शासन के अपराध फिलिस्तीनियों के खिलाफ यथावत जारी है उनमें से एक महत्वपूर्ण कारण विश्व समुदाय की खामोशी और अमेरिका और ब्रिटेन जैसे मानवाधिकारों की रक्षा का दम भरने वाले देशों का व्यापक समर्थन है। अमेरिका और ब्रिटेन न केवल इसराइल का व्यापक समर्थन कर रहे हैं बल्कि मानवता विरोधी उसके अपराधों का औचित्य भी दर्शाते हैं। बहरहाल, जब तक विश्व समुदाय की चुप्पी जारी रहेगी और मानवाधिकारों की रक्षा का राग अलापने वाले देशों का ज़ायोनी शासन के प्रति व्यापक समर्थन जारी रहेगा तब तक फिलिस्तीन के मजलूम लोगों के खिलाफ इसराइल के अपराध यथावत जारी रहेंगे।
दोस्तों, विश्व के कई देशों के पास परमाणु मिसाइल कार्यक्रम है, किंतु अमेरिका को उस पर कोई एतराज नहीं है, जबकि ईरान के गैर परमाणु मिसाइल कार्यक्रम पर व्हाइट हाउस को आपत्ति है। पेश है इस संबंध में इस्लामाबाद से शहबाज अब्बासी के विचार।
आजकल जिस जमाने में मैं और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, हम ये कहते हैं कि आजकल के जमाने में बैन अल्कामी तौर पर स्टेट नेशन का एक कॉन्सेप्ट जो है वो पाया जाता है। वह आप यूं कहते हैं कि रियासत जो है कौम कहलाती है और कौम ही को रियासत करार दिया जाता है। फिर हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं और कहते हैं कि रियासत बुनियादी तौर पर कानूनी एतबार से दो हिस्सों में डिवाइड होती है। नंबर फर्स्ट हम ये कहते हैं कि ये जो है कस्टम्स यानी रिवाज जो बुनियादी तौर पर उसूलों पर मबनी होते हैं, और नंबर सेकंड ट्रीटीज जो है जब मुआहदात की जो दुनिया होती है उसके जरिए रियासत आगे बढ़ती है। अब आप इस बात को जहन में रखें कि जब हम रियासत को कौम के साथ जोड़ देते हैं या कौम को रियासत के साथ जोड़ देते हैं तो एक बात उन दोनों चीजों से साबित हो जाती है कि दिफा जो है वो हर सूरत में चाहे कौम को रियासत कह दें या रियासत को कौम कह दें वो लाजिम होता है, ठीक है। और दिफाई तौर पर खुद को मजबूत करना या मुस्तहकम करना या खुद को आगे बढ़ाना ये हर रियासत के बुनियादी तौर पर जो कस्टम्स होते हैं उनमें शामिल होता है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा अगर पीछे जाएं और पीछे जाकर आप देखें तो आप इस वक्त यूरोप की जो बात कर रहे हैं, चाहे यूरोपियन हो, फ्रांसीसी हो, जर्मन हो, जिनकी भी आप बात करेंगे, सारे लोगों ने अपने दिफा के तौर पर बहुत सारे आपस में कस्टम से निकलकर ट्रीटीज की तरफ गए, मुआहदात की तरफ गए खुद को सेव करने के लिए। और उसकी वजह क्या है, बहुत सारी उनकी स्ट्रेटेजीज हैं। जब हम जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं तो इस बार से हम देखते हैं कि वो बहुत सारी स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं और उन स्ट्रेटेजीज का बुनियादी मेहर और मरकज जो है वो क्या होता है उनके नजदीक यही होता है कि हम दिफा चाहते हैं। इसी तरह अगर आप जो अक्वामी मुतहदा की बहुत सारे कवानीन है उनमें से आप देखें जो 39 नंबर है उसमें देखें तो उसमें भी एक बात ये कही जाती है कि किसी मुल्क की जो है दिफाई ताकत जो है उसको हर सूरत में ये इख्तियार हासिल होता है कि वो कौम या रियासत अपने मफाद के तौर पर, अपनी मर्जी के तौर पर या अपनी ख्वाहिश के तौर पर जो है उसको बरकरार रखे, उसको आगे बढ़े, ठीक है। अब इस तनाजुर में जब हम दुनिया को देखते हैं, इस इतबार से जब हम दुनिया का एनालिसिस करते हैं या तजिया करते हैं तो ये बात बड़ी खुलकर सामने आती है कि पहली बात ये है कि दिफा हर कौम का हक है, ठीक। और दिफाई एतबार से बेहतर करना ये भी हर रियासत की बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी है, ठीक। जब हम ये कहते हैं कि स्टेट नेशन का कॉन्सेप्ट है और ये जो है रियासत की या कौम जो है वो इनफरादी तौर पर जिम्मेदारी है तो फिर किसी सूरत किसी भी मुल्क को जो है वो बैन अल-अक़वामी तौर पर या इनफरादी तौर पर ये हक नहीं पहुंचता कि वो दूसरे मुल्क के दिफाई सिस्टम है या दिफाई जो उसकी अफजाइश हो रही है उसके ऊपर जो है वो इतराज वारिद करे या उसको मतलब ऑब्जेक्शन उसके ऊपर जो है वारिद करे।
और श्रोताओं, अब रुख करते हैं हम भारत का।
दिल्ली सहित देश के कई क्षेत्रों में बुलडोजर राजनीति को लेकर जनस्तर पर काफी रोष पाया जाता है और आज दिल्ली में भाजपा सरकार की इसी बुलडोजर राजनीति के विरुद्ध विशाल विरोध मार्च निकाला गया जिसमें बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत निकाले गए इस शांति मार्च में वाम दलों के अतिरिक्त छात्रों की संस्थाओं और अनेक सामाजिक एवं मानवाधिकार संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और केंद्र सरकार पर बुलडोजर द्वारा सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाया और इसकी निंदा की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि नरेंद्र मोदी की सरकार बेरोजगारी और बढ़ती हुई महंगाई जैसे बुनियादी मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए सांप्रदायिक राजनीति कर रही है जो निंदनीय है। दिल्ली नगर निगम ने भी कथित रूप से सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से बनाए गए ढांचों को गिराने के लिए बुलडोजर का प्रयोग किया है और ये बुलडोजर कई दूसरे क्षेत्रों में भी चले हैं जहां हिंदुओं के घर हैं, लेकिन जहांगीरपुरी और शाहीन बाग में बुलडोजर के चलने के बाद लोगों का कहना है कि गरीबों, दलितों और मुसलमानों के इलाकों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। प्रदर्शनकारी ऐसे प्ले कार्ड्स उठाए थे जिन पर बुलडोजर की राजनीति बंद करो जैसे नारे लिखे थे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की नेता बिरिंदा करात ने कहा कि धार्मिक त्योहारों को हथियार बनाकर देश का सांप्रदायिक माहौल खराब किया जा रहा है।
एक नागरिक के हिसाब से हम स्पष्ट कहते हैं ये माइनॉरिटीज के खिलाफ बुलडोजर है, लेकिन मोदी जी ने कहा ड्रेस से पहचान लो, याद है आपको, ड्रेस से पहचान लो।
प्रदर्शनकारी ज्ञापन सौंपने के लिए उपराज्यपाल के निवास स्थान की ओर बढ़ना चाहते थे जिन्हें पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। प्रदर्शनकारी धरने पर बैठ गए और नारे लगाने लगे। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, अभी आपने राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम सुना। बुधवार को हम साप्ताहिक कार्यक्रम आजकल पेश करते हैं, जिसे इस बार भी पेश किया जाएगा, किंतु उससे पहले प्रस्तुत है एक अन्य साप्ताहिक कार्यक्रम शौर्य गाथा।
शौर्य गाथा।
दोस्तों, कार्यक्रम शौर्य गाथा के एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। आज हम पश्चिमी और अरब देशों द्वारा ईरान के खिलाफ युद्ध में सद्दाम के समर्थन से संबंधित अपनी पिछली चर्चा को जारी रखेंगे।
वर्ष 1986 में फ्रांसीसी खुफिया एजेंसियों के अनुमान के मुताबिक अगर फ्रांस 3 हफ्ते के लिए इराक की मदद रोक देता तो युद्ध में उसकी हार हो जाती। अमेरिका और सोवियत संघ और उनके सहयोगियों ने इस्लामी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से ईरानी राष्ट्र पर युद्ध थोपा था, इसलिए वे सद्दाम की हर प्रकार से मदद कर रहे थे, चाहे वो सैन्य मदद हो या आर्थिक मदद हो। दूसरी ओर पश्चिमी देशों ने सैन्य उपयोग के बहाने ईरान को कटीले तार तक बेचने से इनकार कर दिया था। युद्ध के दौरान अमेरिका और यूरोपीय सरकारों जैसे कि फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने सद्दाम शासन को बड़ी मात्रा में रासायनिक हथियार भी दिए थे, जिसके प्रभाव आज भी ईरान में देखे जा सकते हैं और इसके पीड़ितों की शहादत की खबर आज भी ईरान के किसी न किसी कोने से सुनाई देती है।
दोस्तों, 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति की सफलता के कारण ईरानी राष्ट्र से अमेरिका की दुश्मनी अपने चरम पर थी, क्योंकि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र में स्थित ईरान अमेरिका के प्रभाव और वर्चस्व से बाहर निकल गया था और दुनिया भर में आज़ादी के आंदोलनों के लिए आदर्श बन गया था। यही वजह थी कि अमरीका और सोवियत संघ ईरानी राष्ट्र की इस्लामिक क्रांति की सफलता को बचा नहीं पा रहे थे और उन्होंने उसके पतन के लिए साजिशें शुरू कर दी। अभी ईरानी जनता ने इस्लामिक क्रांति की सफलता का स्वाद भी नहीं चखा था कि उन पर युद्ध थोप दिया गया, जिसके मुकाबले के लिए उन्हें तैयार होना पड़ा। ईरान के विभिन्न इलाकों में सांप्रदायिक दंगे भड़काना, वरिष्ठ अधिकारियों और महत्वपूर्ण हस्तियों की हत्या करना और बम धमाकों और आतंकवादी हमलों से उन्होंने ईरानी राष्ट्र के सामने गंभीर चुनौतियाँ उत्पन्न कर दी। हालांकि इस सब के बीच इस्लामी क्रांति की कुछ विशेषताओं से दुश्मन अनजान रहा, जैसे कि इमाम खुमैनी का
विचारशील नेतृत्व और ईरानी राष्ट्र का साहस।
ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनेई युद्ध की शुरुआत से ही सद्दाम हुसैन की सैन्य चढ़ाई के खिलाफ अग्रणी हस्तियों में से एक थे। 8 साल की पवित्र प्रतिरक्षा के सफल अंत का विश्लेषण करते हुए वे कहते हैं, थोपे गए युद्ध के दौरान कि जो 8 वर्षों तक जारी रहा, अमेरिका ने सद्दाम की मदद की, नाटो ने सद्दाम की मदद की, सोवियत संघ ने उन दिनों सद्दाम की मदद की, अरब देशों ने अपनी सभी अक्षमताओं और कमजोरियों के साथ सद्दाम की मदद की, यानी पूरब और पश्चिम ने सद्दाम के पक्ष में और इस्लामी क्रांति के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बना लिया था। लेकिन इस्लामी गणतंत्र ईरान ने हार नहीं मानी और उसने प्रतिरोध किया और ईश्वर की कृपा से इस लड़ाई में जीत हासिल की। 8 साल के युद्ध के बाद वे ईरान की 1 इंच जमीन भी कब्जा न कर सके।
ईरान की इस्लामिक क्रांति के सर्वोच्च नेता 8 वर्ष युद्ध की एक अन्य स्थान पर समीक्षा करते हुए कहते हैं, ईरान पर थोपे गए युद्ध में अमेरिका का उद्देश्य ये था कि वो तेहरान के मुकाबले में सद्दाम की जीत चाहता था। ईरानी राष्ट्र का अपमान करना चाहता था ताकि ये कह सके कि देखो, इस्लामिक क्रांति की वजह से ईरान हार गया। लेकिन नतीजा इसके विपरीत निकला। पिछले 200 वर्षों के दौरान ईरान ने जिस देश के खिलाफ युद्ध लड़ा है उसे हार हुई। लेकिन यह 8 वर्षीय युद्ध पहला ऐसा युद्ध था जिसमें ईरान ने अपने दुश्मन को हरा दिया और खुद जीत गया। एक बालिश जमीन पर भी दुश्मन का कब्जा नहीं होने दिया। ये ऐसी पहली लड़ाई थी। अमेरिका जो चाहते थे बिल्कुल उसका उल्टा हुआ।
ईरान के तत्कालीन संसद सभापति और युद्ध के प्रमुख कमांडर हाशिम रफसंजानी इस संदर्भ में कहते हैं, ईरान में पश्चिम के बहुत ज्यादा हित थे, इसलिए क्रांति उसके हितों के लिए सीधा खतरा थी। वो ईरान में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना चाहता था जिससे लोग निराश हो जाएं और उससे कहने का मौका मिल जाए कि पश्चिम और पूरब के समर्थन के बिना क्रांति बाकी नहीं रह सकती। युद्ध भी इसी उद्देश्य से छेड़ा गया था। सद्दाम को इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए चुना गया था। फारस की खाड़ी और पश्चिम एशिया के मामलों के जानकार जेम्स बिल ने युद्ध के मूल कारणों का उल्लेख करते हुए अपनी किताब में लिखा है, इराक को आशा थी कि वो ईरान की इस्लामी क्रांति को उसके शुरुआत में ही खत्म कर देगा।
दोस्तों, थोपे गए युद्ध से पहले इराक का बासी शासन 636 बार ईरानी सीमाओं पर हमले कर चुका था। लेकिन 22 सितंबर 1980 को सद्दाम ने इस सपने के साथ कि एक हफ्ते के अंदर वो तेहरान में बैठकर चाय की चुस्कियों का आनंद लेगा, ईरान पर हमला कर दिया। इस हमले में सेना की 12 बटालियनों, 15 सशस्त्र ब्रिगेडों, 4,500 टैंकों, 360 लड़ाकू विमानों और 400 हेलीकॉप्टरों जैसी विभिन्न सैन्य सुविधाओं के साथ ईरान पर सैन्य चढ़ाई कर दी। सद्दाम ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि एक हफ्ते बाद प्रेस के साथ अगली बातचीत वो तेहरान में करेंगे। लोगों के कड़े प्रतिरोध के कारण 35 दिन तक वो खुर्रम शहर के प्रवेश द्वार पर ही फंसा रहा और नई नई इस्लामी व्यवस्था के पतन के प्रयासों को पहला झटका यही मिल गया।
उन दिनों ईरानी सेना बहुत व्यवस्थित नहीं थी और इस्लामी क्रांति फोर्स IRGC के गठन को ज्यादा समय नहीं गुजरा था, लेकिन लोगों की एकजुटता ने धीरे धीरे इन समस्याओं पर काबू पा लिया। सद्दाम के हमले के 1 साल बाद ही ईरान की रणनीति में भारी बदलाव आया और वो रक्षात्मकता से आक्रामकता की स्थिति में आ गई। इसके नतीजे में जिन ईरानी क्षेत्रों पर इराकी सेना ने कब्जा कर लिया था, 9 महीने के अंदर अधिकांश क्षेत्रों को आजाद करवा लिया गया और सद्दाम शासन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा।
थोपे गए युद्ध में ईरान की जीत का एक मुख्य कारण कम से कम सैन्य उपकरणों और हथियारों की उपलब्धि के बावजूद ईरानी युवाओं का साहस और इमाम खुमैनी का विचारशील नेतृत्व था। इमाम खुमैनी का आम जनता और विशेष तौर पर युवाओं के साथ बहुत गहरा और मजबूत रिश्ता था। ईरानी राष्ट्र ने इमाम खुमैनी के नेतृत्व में पहलवी शासन के पतन और युद्ध में सफलता तक अपना प्रतिरोध जारी रखा। उसके बाद भी लोगों को अपने कंधों पर एक भारी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। वो जिम्मेदारी थी इस जीत की रक्षा करना। इस संदर्भ में फ्रांसीसी खुफिया एजेंसी के तत्कालीन प्रमुख केंट डेमोरांज का कहना था, ईरान क्षेत्र की एक वास्तविक ताकत है जिसके पास बड़ी जनसंख्या के साथ विशाल क्षेत्रफल में तेल के बहुत ज्यादा भंडार हैं। हजारों साल से ये एकमात्र साम्राज्य रहा है जिसका पूरे क्षेत्र पर वर्चस्व रहा है, लेकिन अब इमाम खुमैनी के नेतृत्व में इस ताकत में कई गुना इजाफा हो गया है।
सद्दाम के नाम अपने एक संदेश में डेमांस ने लिखा था, इस व्यक्ति यानी स्वर्गीय इमाम खुमैनी के बारे में सावधान रहना, जंगल में आग लगने से ज्यादा कोई चीज खतरनाक नहीं है, क्योंकि हवाओं के तेज झोंके इस आग को पड़ोसी देशों की वैचारिक सीमाओं तक भी ले जा सकते हैं। अमेरिका और उसके यूरोपीय और क्षेत्रीय सहयोगियों ने पुराने मतभेदों के चलते इराक के बासी शासन को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प समझा। इराक और ईरान के बीच सीमा मतभेद तेहरान पर हमले का बहाना बन गया। इराक के तत्कालीन प्रधानमंत्री ताहा यासीन रमजान ने ईरान की इस्लामी क्रांति से मुकाबले का दावा करते हुए कहा था, ये युद्ध 1975 के समझौते या कुछ 100 किलोमीटर और आधी अरवंद नदी के लिए नहीं है, बल्कि ये युद्ध इस्लामी गणतंत्र ईरान के पतन के लिए है। अमेरिकी कांग्रेस की आर्म्ड सर्विस कमेटी के तत्कालीन प्रमुख लेसे एस्पिन ने कहा था, अमेरिका का रणनीतिक लक्ष्य ईरान की कट्टरपंथी इस्लामी क्रांति को अरब दुनिया और खास तौर पर फारस खाड़ी में फैलने से रोकना होना चाहिए, भले ही उसे इसके लिए सैन्य बल का उपयोग ही क्यों न करना पड़े।
दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। आज कल
दोस्तों, कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम रक्षा क्षेत्र में ईरान की कुछ अन्य उपलब्धियों के विषय पर चर्चा करेंगे। स्वाति और रवि जैदी का सलाम स्वीकार करें।
दोस्तों, युद्ध के बाद की अवधि में इस्लामी गणतंत्र ईरान के रक्षा उद्योग ने सैन्य आत्मनिर्भरता और इस्लामी क्रांति संरक्षक बल IRGC सहित सशस्त्र बलों द्वारा आवश्यक उपकरणों और हथियारों के डिजाइन और निर्माण की दिशा में महान कदम उठाए हैं। देश के आयुध के क्षेत्र में रक्षा उद्योग की क्षमता हालिया वर्षों में 45 गुना बढ़ गई है और विभिन्न प्रकार के जमीनी, वायु और नौसेना सैन्य उपकरणों के साथ साथ एरोस्पेस, वायु सेना, नौसेना, इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्माण के क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। देश के रक्षा उद्योग ने जमीनी लड़ाई में कई अन्य महत्वपूर्ण और मूल्यवान उपलब्धियां अर्जित की हैं।
विभिन्न प्रकार के मानव युक्त और मानव रहित वायुयानों के निर्माण के क्षेत्र में रक्षा उद्योग के ऊंचे कदमों के दृष्टिगत उनके इंजनों के निर्माण के क्षेत्र में कदम उठाने की आवश्यकता पड़ी। इस मुद्दे को एजेंडे में रखा गया और बहुत कम समय में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। विमान के इंजन के निर्माण के लिए उच्च स्तर के ज्ञान और सटीक गणना की आवश्यकता होती है, जो सैद्धांतिक रूप से उन्नत कंप्यूटरों का उपयोग करके की जाती है, और इसका परिणाम व्यावहारिक रूप में पहले इंजन परीक्षण प्लेटफॉर्मों के रूप में सामने आया, फिर विमान के निर्माण पर इसके नतीजे सामने आने लगे। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी नया नमूना तैयार करने में बहुत समय लग जाता है।
ईरानी विशेषज्ञों ने G85 टर्बोजेट इंजन को रिवर्स इंजीनियरिंग करके इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसे अब ऑज टर्बोजेट इंजन के रूप में जाना जाता है। एक इंजन जिसे वायुसेना के लड़ाकू जेट और ईरानी लड़ाकू विमानों जैसे कौसर दोनों में स्थापित किया जा सकता है। ऑज इंजन ईरान के इस्लामी गणतंत्र के रक्षा मंत्रालय द्वारा बनाए गए टर्बोजेट इंजनों में से एक है, जिसका अनावरण 22 जुलाई 2016 को तत्कालीन राष्ट्रपति हसन रूहानी की उपस्थिति में रक्षा उद्योग दिवस के अवसर पर किया गया था। इस कार्यक्रम में तत्कालीन रक्षा मंत्री जनरल हुसैन दहकान और रक्षा क्षेत्र के वरिष्ठ प्रबंधक, वैज्ञानिक और विशेषज्ञों का एक समूह शामिल था।
समारोह में अनावरण के किए गए टर्बोजेट इंजन का नाम ऑज रखा गया। इस्लामी गणतंत्र ईरान के तत्कालीन रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल हुसैन दहकान ने इस इंजन के बारे में कहा कि यह उत्पाद सबसे जटिल हवाई उत्पादों में से एक है, जिसे बिना किसी बाहरी भागीदारी के, चाहे वह ज्ञान के क्षेत्र में हो या सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के क्षेत्र में, डिजाइन और निर्मित किया गया है।
दोस्तों, ईरान में विमान इंजन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास और प्रगति के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय का उद्योग संगठन में 20 अगस्त 2020 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर हसन रूहानी के आदेश से रक्षा मंत्रालय के विमान उद्योग संगठन के CEO ने विमानन में राष्ट्रीय ऑज टर्बोजेट इंजन उत्पादन लाइन का उद्घाटन किया। ऑज इंजन की उत्पादन लाइन के उद्घाटन पर राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय टर्बोजेट लाइट एयरक्राफ्ट इंजन के निर्माण के लिए किए गए प्रयासों की प्रशंसा की और कहा कि इस इंजन के मुख्य भाग का अनावरण 1995 में किया गया था और आज के कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस इंजन के उत्पादन लाइन का उद्घाटन किया जाएगा।
इस्लामी गणतंत्र ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर हसन रूहानी ने कहा कि आमतौर पर जब देश घोषणा करते हैं कि वे विमान निर्माता हैं, तो उनका मतलब इंजन से नहीं बल्कि पंखों और धड़ से होता है और वे इंजन को कहीं और से खरीदते हैं। लेकिन हमारे लिए ये बात बहुत ही अहम है कि हम मोटर या इंजन और फ्लाइंग चेयर को खुद ही तैयार कर रहे हैं और हम अपने दो पैरों पर खड़े हैं और यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है।
रक्षा मंत्रालय के विमानन उद्योग संगठन के प्रबंधक निदेशक सेकंड ब्रिगेडियर जनरल अफशीन ख्वाजा फर्द ने ऑज राष्ट्रीय टर्बोजेट इंजन के उद्घाटन समारोह में, जो सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के आदेश में अंजाम पाया और बनाया गया था, जो वैज्ञानिकों, डिजाइनरों और रक्षा उद्योग के विशेषज्ञों की जिहादी गतिविधियों का परिणाम था। रक्षा मंत्रालय के विमान उद्योग संगठन के प्रबंधक निदेशक सेकंड ब्रिगेडियर जनरल अफशीन ख्वाजा फर्द ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ऑज नेशनल इंजन पहला स्वदेशी टर्बोजेट इंजन है जिसे कौसर साइका आजरक्ष युद्धक विमान तथा विकसित प्रशिक्षण जेट यासीन सहित देश के लड़ाकू विमानों को विकसित किया गया है जिसमें लगभग 10 टन की टेक ऑफ सीमा है।
आंतरिक क्षमता पर भरोसा करते हुए और देश के इंजीनियरों के ज्ञान व विशेषज्ञता पर भरोसा करते हुए और 14,000 से अधिक भागों और सहायक उपकरण के स्थानीय उत्पादन के साथ देश में विश्वविद्यालयों और नॉलेज बेस्ड कंपनियों की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता का अधिकतम उपयोग करते हुए 2016 में पहली बार इस इंजन का निर्माण किया गया था। इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति ने रक्षा उद्योग दिवस के अवसर पर इसका अनावरण किया था।
अमीर ख्वाजा फर्द ने कौसर लड़ाकू विमान में औज देशी टर्बोजेट इंजन की स्थापना को कौसर परियोजना में सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में माना जाता है। औज ईरान में बना पहला जेट इंजन है जिसमें 50,000 ऊंचाई तक उड़ान भरने की क्षमता है। इसमें विभिन्न परिचालन और जलवायु परिस्थितियों में से निपटने की क्षमता पाई जाती है और इसको 10 टन तक के वजन के साथ विभिन्न प्रकार के विमानों में स्थापित किया जा सकता है।
इस इंजन की दूसरी इकाई का उत्पादन और परीक्षण 2017 में औज नेशनल इंजन लेबोरेटरी में किया गया था और इस इंजन का जमीनी परीक्षण, टैक्सी और उड़ान परीक्षण 2017 में और 2018 में कोसर स्वदेशी विमान पर सफलतापूर्वक किए गए थे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह उत्पादन लाइन देश की घरेलू क्षमताओं का उपयोग करके राष्ट्रीय औज इंजन के निर्माण की लागत को बाहरी खर्चों की तुलना में 50% तक कम कर दें।
अगस्त 2019 में औज टर्बोजेट इंजन की उत्पादन लाइन के शुरू होने के बाद 13 दिसंबर 2019 को इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ और रक्षा मंत्रालय के विमानन उद्योग संगठन के सीईओ अमीर ख्वाजा फर्द और वायुसेना के तत्कालीन कमांडर अमीर नसीर जादे की उपस्थिति में दोनों पक्षों के बीच टर्बोजेट इंजन के उत्पादन शुरू करने के क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने का उद्देश्य हमारे बीच सहयोग का विस्तार करना और उत्पादन में वृद्धि करना है ताकि इस्लामी गणतंत्र ईरान की वायुसेना को विशेष रूप से विमान के इंजन के क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जा सके।
स्वदेशी लड़ाकू उत्पादन के बुनियादी ढांचे के विकास पर सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के बल का उल्लेख करते हुए रक्षा मंत्रालय के वायु उद्योग संगठन के महानिदेशक ने कहा कि ईश्वर की कृपा से रक्षा उद्योग के विशेषज्ञों के सघन प्रयासों से आज यह सिलसिला किसी हद तक उचित ढंग से व्यावहारिक हो सका है। हमारा लक्ष्य गुणवत्ता को विकसित करने के लिए आवश्यक संसाधनों को आकर्षित करके राष्ट्रीय औज इंजन उत्पादन लाइन की क्षमता में वृद्धि करके और इन इंजनों को वायुसेना के हवाले करने से वायुसेना के हवाई बेड़े को और अधिक संचालित और मजबूत करना है।
वायुसेना के कमांडर अमीर नसीरजादे ने भी विमान इंजनों के निर्माण में रक्षा मंत्रालय के वायु उद्योग संगठन की हालिया सफलता पर संतोष व्यक्त किया और आशा व्यक्त की कि इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर के साथ ही वायुसेना और सेना के बीच नया सहयोग स्थापित होगा। राष्ट्रीय और इंजन उत्पादन लाइन के शुभारंभ का उल्लेख करते हुए उन्होंने इसे अधिक औज टर्बोजेट इंजनों की आपूर्ति में विमानन उद्योग संगठन की अधिक सफलता की शुरुआत करार दिया जो वायुसेना और कौसर प्रशिक्षण जेट विमानों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
14,000 से अधिक कलपुर्जों वाला औज इंजन F-5 लड़ाकू विमान पर बने अमेरिकी G85 इंजन पर आधारित है, जो दुनिया के सबसे सक्षम इंजनों में से एक है और इसका निर्माण इंजन निर्माण के क्षेत्र में ईरान को 8 उन्नत देशों में से एक बनाता है। 10 टन वजन वाला विमान जिस पर ऑज इंजन लगा हुआ होता है वह 50,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। डिजाइन और निर्माण क्षेत्र में ड्राई इंजन और विदाउट आफ्टर बर्नर के 3,500 पाउंड का थ्रस्ट उत्पन्न करता है।
इस इंजन के ब्लेड सटीक वैक्यूम कास्टिंग तकनीक से बनाया गया है, जो आज दुनिया में सबसे सटीक कास्टिंग और टर्निंग तकनीकों में से एक है, जिसे एरोस्पेस उद्योग के विशेष सुपर मिश्रित धातुओं को स्थानीयकरण करके डिजाइन और निर्मित किया गया था। मुख्य धुरी टरबाइन डिस्क, फ्रंट और रेयर कंप्रेसर डिस्क और कंप्रेसर डिस्क सहित टर्बोजेट इंजन के कलपुर्जों की डिजाइन और निर्माण, प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण का ज्ञान विमानन पेशेवरों और विशेषज्ञों के प्रयासों से संभव हुआ है, जो राष्ट्रीय ऑज इंजन पर भी लागू होता है।
ऑज मोटर कंट्रोल सिस्टम हाइड्रो मैकेनिकल प्रकार का होता है, जिसे जरूरत पड़ने पर ऑल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में अपग्रेड किया जा सकता है। राष्ट्रीय ऑज इंजन का उपयोग हमारे देश के रक्षा उद्योग के लड़ाकू जेट जैसे कौसर जेट और यासिन प्रशिक्षण जेट में भी किया गया है। ऐसा लगता है कि हमारे देश का रक्षा उद्योग इस देशी इंजन का उपयोग अन्य घरेलू रूप में निर्मित लड़ाकू जेट विमानों में करेगा, जिन्हें डिजाइन और निर्मित किया जा रहा है। ऑज इंजन की बहुत ही जटिल तकनीक ने देश के विमानन उद्योग में डिजाइन और निर्माण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाई है।
दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है, हमें अनुमति दें।
इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।